हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वहीं झलक को आकांक्षा से बात करते हुए काफी देर हो चुकी थी और उसे सिद्धार्थ खुराना के ऑफिस भी पहुंचना था। तब तक रणविजय के आदमियों ने झलक को ऑफिस में ना पाकर रणविजय को इसके बारे में बता दिया था। ये सुनते ही रणविजय की आंखों में खून उतर आया और वो अपने आदमी पर चिल्लाते हुए बोला, अगर अगले एक घंटे के अंदर अंदर मुझे झलक की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली ना, तो मैं तुम दोनों को अपने हाथों से मार डालूंगा। दोनों आदमी काफी हद तक गुस्से से भरे हुए थे और साथ ही साथ डरे हुए भी थे, क्योंकि अगर झलक उन्हें नहीं मिली तो उनका बॉस उन्हें जिंदा गाड़ देगा। वे अपने बॉस के गुस्से को अच्छी तरह जानते थे। वहीं रणविजय खुद भी तैयार होकर बाहर निकल चुका था ताकि वो खुद झलक को ढूंढ सके। वहीं अनामिका ने भी रणविजय को फॉलो करना शुरू कर दिया था और वो भी उसी के साथ थी, क्योंकि वो अब झलक की जिंदगी में रणविजय की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आने देना चाहती थी। वैसे भी झलक से उसे कल की तरह अपनेपन का एहसास होता था। जब कोई अपने दिल से सच्चा दोस्त बन जाता है तो उसके साथ कुछ गलत होते हुए वो देख नहीं सकती थी। इसी वजह से वो भी रणविजय के साथ गई थी कि जरूरत पड़ी तो वो उसकी मदद करेगी। रणविजय को इस पर कुछ खास शक नहीं हुआ और वो सबको साथ लेकर निकल गया था। वहीं सिद्धार्थ खुराना अब जल्दी ही अपने शानदार ऑफिस पहुंच चुका था और लगातार घड़ी की सुइयों को देख रहा था, क्योंकि इस सुबह उसका सिर पूरी तरह से फटा जा रहा था। लेकिन हमेशा से सिद्धार्थ को अपने टाइम पर ऑफिस जाने की आदत थी और वो टाइम पर कंपनी में पहुंच भी चुका था। तब तक रोनित उसके लिए नींबू पानी वगैरह लेकर आ चुका था ताकि सिद्धार्थ का सिर दर्द थोड़ा हल्का हो जाए। सिद्धार्थ लगातार सिर को दबाते हुए सोच रहा था कि झलक की वजह से पूरी रात उसकी बेहद दर्द में गुजरी थी और इसी वजह से अब वो उस दर्द का बदला झलक से लेना चाहता था। वो लगातार सिर्फ घड़ी की सुइयों को देख रहा था कि कब घड़ी ठीक 9 बजे दिखाएगी और झलक ऑफिस में आएगी। लेकिन 9 बजकर तो ऑलरेडी 20 मिनट हो चुके थे। सिद्धार्थ खुराना लाल आंखों से लगातार CCTV मॉनिटर को देख रहा था, लेकिन अभी तक किसी भी फुटेज में उसे झलक आती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। रोनित की धड़कनें तेज होने लगी थी और वो सोचने लगा था कि ना जाने उसका बॉस अपने गुस्से और जिद में क्या कर बैठेगा, कहीं वो झलक के साथ कुछ गलत ना कर दे। उसे काफी हद तक डर लग रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। उसने थोड़ा सा साइड में जाकर कई बार झलक को कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन झलक उस वक्त अपनी स्कूटी पर सवार होकर तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन ट्रैफिक की वजह से ना तो वो सिद्धार्थ का फोन उठा पा रही थी, न रोनित का, और ना ही उसे फोन की आवाज सुनाई दे रही थी। वैसे भी झलक सबसे जल्दी सिद्धार्थ के ऑफिस पहुंचने वाली थी, लेकिन आकांक्षा की वजह से उसका काफी टाइम बर्बाद हो चुका था। सुबह के वक्त जब सभी लोग अपने अपने ऑफिस और काम के लिए निकल रहे थे तो मुंबई की सड़कों पर एक अलग ही तरह का ट्रैफिक जाम हो चुका था। झलक बहुत तेजी से स्कूटी चलाते हुए आगे बढ़ रही थी और ठीक 9:40 पर उसने सिद्धार्थ खुराना के ऑफिस में एंट्री ली। जैसे ही CCTV कैमरे में झलक आते हुए दिखाई दी, सिद्धार्थ की आंखों में एक अजीब सा सुकून उतर आया, लेकिन उसी के साथ साथ उसके होठों पर एक मक्कार सी मुस्कान भी फैल गई, क्योंकि पहले ही दिन उसे एक वजह मिल चुकी थी कि उसे झलक के साथ क्या करना है। वहीं रोनित ने भी झलक को देखकर राहत की सांस ली और फटाफट दौड़कर उसके करीब जाने लगा, लेकिन तभी आदेश मिला, कहाँ जा रहे हो, जाओ जाकर सारी तैयारियां करो और मिस झलक को सीधा केबिन में भेज दो। ये सुनकर रोनित को थोड़ा सा झलक के लिए बुरा लग रहा था कि न जाने उसका बॉस गुस्से में उसके साथ क्या करेगा। वहीं झलक भी समझ चुकी थी कि वो ऑलरेडी काफी देर से लगभग 40 मिनट लेट हो चुकी है। फिलहाल वो सीधा चेंजिंग रूम में गई और उसने वहां से रोनित द्वारा दिए गए ऑफिस के कपड़े पहने। वो ड्रेस उसके घुटनों तक आ रही थी, जिसमें झलक की गोरी गोरी लंबी टांगे साफ दिखाई दे रही थी। झलक को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन इसके साथ उसने वही ब्लैक बूट्स पहने थे जो रोनित ने ही उसे दिए थे। फिलहाल झलक ने जो ड्रेस पहनी थी उसमें डीप गला था और साथ साथ उसकी पूरी लंबी टांगे घुटनों तक साफ दिखाई दे रही थी। अब जब झलक खुद को आईने में देखते हुए एडजस्ट कर रही थी तो मन ही मन सोचने लगी कि आखिर इस आदमी को किसी लड़की की टांगे या उसकी गले का हिस्सा देखने का इतना शौक क्यों होता है। मिस्टर सिद्धार्थ खुराना, तुम इतनी घटिया किस्म के इंसान कैसे हो गए हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या यही वो सिद्धार्थ था जिसे मैंने कभी जाना था, या फिर अब तुम बिल्कुल अलग हो चुके हो। लेकिन फिलहाल झलक कपड़ों की वजह से सिद्धार्थ को कुछ भी कहने का मौका नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उसने वही कपड़े पहने रखे और सीधा बाहर जाने लगी। वहां बाहर सिद्धार्थ उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने झलक को उन अलग कपड़ों में देखा तो वो कुछ पल के लिए देखता ही रह गया। झलक उस वक्त बेहद अट्रैक्टिव और खूबसूरत दिखाई दे रही थी, क्योंकि वेस्टर्न कपड़े उसने इस तरह से पहली बार पहने थे। झलक ने अपने होठों पर किसी तरह की कोई लिपस्टिक नहीं लगाई थी। उसका लिपस्टिक वगैरह लगाने का कोई इरादा नहीं था। उसे लग रहा था कि कपड़े ही ऐसे हैं कि उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल रोनित उसे देखता ही रह गया। तभी झलक ने उसका ध्यान खींचते हुए कहा, क्या बात है, तुम्हारा मुंह क्यों खुला रह गया है? अगर तुम्हारा घूरना बंद हो गया है तो मुझे काम बता दो, मुझे क्या काम करना है? ये सुनकर वो थोड़ा हकलाते हुए बोला, वो मैडम प्लीज़ आपको सर बुला रहे हैं। ये सुनते ही झलक ने अपने सिर पर हाथ मार लिया और मन ही मन सोचने लगी कि क्या उसका उसे सुबह सुबह अपने 40 मिनट लेट आने की सज़ा देने का इरादा है। अब जैसे ही रोनित ने ये सुना तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो मन ही मन सोचने लगा कि झलक मैडम तो मिस्टर सिद्धार्थ खुराना को कुछ ज़्यादा ही जानती हैं। लेकिन अपना गला ठीक करते हुए उसने कहा, वो मैडम प्लीज़ आपको सर बुला रहे हैं, आपको सबसे पहले उन्हीं से मिलना होगा। फिलहाल झलक को ये बात अंदर ही अंदर पता थी कि वो उससे सबसे पहले बात करके उसी को निशाना बनाएगा और कोई ना कोई सज़ा ज़रूर देगा। वैसे भी वो सोच रही थी कि इतने दिनों तक वो अपना बचा कुचा काम करती रहेगी और साथ साथ उसके साथ पूरी तरह से अपना रिश्ता खत्म कर देगी, तब तक कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। सिद्धार्थ खुराना उसे पैसे ज़रूर देगा, क्योंकि जब दादी के लिए उसने उसे अपने घर रखा था तो वो हर रोज़ उसे पैसे देता था, लेकिन वे सारे पैसे अब उसके खर्च हो चुके थे। फिलहाल थोड़ी गहरी सांस लेते हुए झलक सिद्धार्थ के केबिन की ओर बढ़ने लगी। वहीं सिद्धार्थ खुराना अपने चेयर पर घूमता हुआ बैठा हुआ था। जैसे ही झलक ने दरवाजे पर 2-3 बार नॉक किया और बिना जवाब का इंतजार किए अंदर आ गई। उसने कहा, सर आपने मुझे बुलाया? ये सुनते ही सिद्धार्थ तुरंत खड़ा हुआ और पलटकर झलक की ओर देखने लगा। उसने झलक को बहुत बुरी तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और फिर अचानक गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी इजाज़त अंदर आने की? बाहर जाओ और जब तक मैं ये ना बोलूं कि अंदर आओ तब तक अंदर आने की हिम्मत मत करना, समझी तुम? सिद्धार्थ की आवाज़ सुनकर झलक अंदर तक कांप गई थी, लेकिन उसके पास उसके कहे अनुसार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वो जानती थी कि ये इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए वो चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। उसने बाहर जाकर दरवाज़ा खटखटाया और 2 बार बोली, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? लगभग 8 बार लगातार नॉक करने और बोलने के बाद उसने उसे अंदर आने की इजाज़त दी।
झलक जैसे ही अंदर गई, सिद्धार्थ ने उसे एक बार फिर गहरी नज़रों से ऊपर से नीचे तक देखा। हालांकि उसे झलक बेहद प्यारी और अट्रैक्टिव लग रही थी, लेकिन अपने गुस्से और घमंड में वो उसे कोई कॉम्प्लीमेंट देना नहीं चाहता था। वो ठंडी आवाज़ में बोला, क्या आपको पता है कि आप पूरे 40 मिनट लेट आई हैं? क्या आप मुझे ये बताना चाहेंगी कि लेट आने का कारण क्या है? और अगर आपको ये लग रहा है कि मैं आपसे कारण पूछूंगा तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। यहाँ कारण नहीं पूछे जाते, यहाँ सीधा सज़ा दी जाती है।